نحمده ونصلي على رسوله الكريم، الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. میری گفتگو کا عنوان ہے 10 بہترین دن. سورت فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ گزر جائے، ان باتوں میں اہل عقل کے لیے کیا کوئی بھاری قسم ہے؟ سورت فجر کی ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کچھ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور کہا کہ والفجر، فجر کی قسم. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ ہر فجر کی قسم، ہر روز جو فجر ہوتی ہے اسی طرح پھر ایک فجر ہوگی جب انسان کا حساب کتاب ہوگا، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو ہر ہونے والی صبح انسان کو اس کے انجام کی طرف توجہ دلاتی ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام فجر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یوم النہر یا عید الضحیٰ کی فجر ہے. والفجر، اور عید الضحیٰ کا دن، یوم النہر کا دن، قربانی کا دن بہت ہی اہم دن ہے، وہ عام دنوں کی طرح دن نہیں ہے. اسی طرح ولیال عشر کے 10 راتوں کی قسم، جمہور مفسرین نے 10 راتوں سے مراد یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک کی راتیں مراد لی ہیں. یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج کی راتیں ہیں اور اللہ تعالی نے ان راتوں کی قسم کھائی. اسی طرح بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، لیکن زیادہ تر ذوالحج کے ابتدائی 10 دن اس سے مراد ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا چیز مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو دنیا میں کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، کچھ خاص ہوتی ہیں. مثلا سارے ہی انسان اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن انسانوں میں جو خاص انسان ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں. اب اللہ کے انبیاء کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح دن اور رات، صبح اور شام، مہینے اور سال، سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر اور کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. مثلا رمضان کا مہینہ باقی مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. گویا کہ نفل کا فرض کے برابر اور فرض کا نہ جانے 70 یا اس سے بھی کئی گنا آگے بڑھ سکتا ہے. تو گویا کہ رمضان بڑا خاص مہینہ ہے، اس کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے. اسی طرح اب ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن ہفتے کے سب دنوں پر جمعے کو بڑی خاص فضیلت حاصل ہے. جمعے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، خاص ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. تو جمعہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جمعہ امت مسلمہ کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کا دن ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے عبادت کا دن ہے. وہ دن امت مسلمہ میں اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو کچھ دن ایسے ہیں کہ ان کو عام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، تو اسی طرح ذوالحج کے 10 دن ان کو عام دنوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ عام دن نہیں ہیں، یہ بڑے خاص دن ہیں. اور ان کو عام دنوں پر کیوں فضیلت حاصل ہے؟ یہ 10 دن ذوالحج کے مہینے کے دن ہیں اور حج کی عبادت ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے. وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، پکارتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 97 میں لوگوں پر فرض کر دیا گیا کہ جو اللہ کے گھر کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے. حج کیا ہے؟ حج سراسر عشق اور محبت سے عبارت ہے. یہ ایک معین اور مقرر وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین پر حاضری دینے کا نام ہے. اس کی پکار پر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنے کا نام ہے. خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیوانہ وار چومنے کا نام ہے اور اس کے در و دیوار سے چمٹنا اور آہوزاریاں کرنا اور مناجات کرنا اور مجنوں بن جانا, اپنا گھر, اپنے بچے, اپنی بیوی, جو بھی پیچھے عزیز و قارب, ان کو چھوڑ کر چلے جانے کا نام حج ہے. اور بیت اللہ کے اندر ایک مقناطیسی کشش ہے, عاشقوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, یہ جو بجھے دل ہیں ان کو جگا دیتا ہے, جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو تڑپا دیتا ہے. اور حج تو اللہ کے آگے تسلیم و رضا کی تصویر بننے کا عمل ہے. برتر از اندیشائے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اور حج عمرہ یہ کیا ہے؟ بہار اور حرم کی بہار کا کیا کہنا, بہار اور حرم کی بہار کا کیا کہنا, تمام رحمت پروردگار کیا کہنا, قدم قدم پہ ہدایت, روش روش پہ نجات, نفس نفس کرمے بے شمار کیا کہنا. اور آج کل کے دن پھر کیسے دن ہیں کہ پھر سوئے حرم کی باتیں ہونے لگیں, اور یہ دل جاتا ہے کہ میں اور آپ بھی حرم کی, خانہ کعبہ کی اور عشق و عاشقی کی باتیں کریں. اور وہ عشق و عاشقی, وہ حج کی عبادت جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ دیکھیے کہ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے پلر ہیں, یہ اسلام کے ارکان ہیں, یہ اسلام کے ستون ہیں. اسلام کی عمارت نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ پر قائم کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں نماز کیا ہے, پانچ وقت فرض ہے لیکن جب چاہیں ہم نفل بھی ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ ایک دفعہ سال میں ہمیں دینا فرض ہے لیکن جب چاہیں آپ صدقات, خیرات, انفاق کرتے رہیں, صبح دیکھے نہ شام اور اللہ کے راہ میں دیتے رہے, جب چاہے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح رمضان کے روزے سال میں ایک مہینے کے لیے فرض کر دیے گئے لیکن باقی 11 مہینے بھی آپ جب چاہیں نفل روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن میری بہنوں, حج کی عبادت عجیب عبادت ہے. حج کی عبادت وہ خاص عبادت ہے. حج کی عبادت وہ خوبصورت عبادت ہے جو مخصوص دنوں میں, مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہے, اور ان مخصوص دنوں اور مخصوص اوقات کے بغیر حج کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی. تو حج اللہ کے حکم کا اتباع کرنا, اس کے قرب کی لذت کو پانا, اور حج محبتوں کے امتحان کا خوبصورت سفر ہے. یہ وفا کی ایمان افروز کہانی کا نام ہے جو بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں میں رنگے جانے کا نام ہے. یہ بی بی ہاجرہ کے قدموں پر چلنے کا نام ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ہر رکن میں ایمان کو تازگی ملتی ہے, ایک انسان کے نفس کو سرور ملتا ہے. اور حج کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہر لمحہ, ہر قدم, ہر سانس, ہر ادا اللہ کے نام کر دی جائے اور سر تا پا اسی کا ہو جایا جائے, حتیٰ کہ سب کچھ اس کے نام قربان کر دینے کا اعلان کرنے کا نام حج ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام متقیوں کے امام تھے, وہ مسلم حنیف تھے, وہ اپنی ذات میں اکیلے ایک امت تھے, وہ قلب منیب لے کر آئے, وہ قلب سلیم لے کر آئے. سو خداوند ملے, ایک سے ایک سجدہ طلب, انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے امتحانات سے نوازا, ان کا قدم قدم, لمحہ لمحہ امتحان لیا, اور وہ تمام امتحانوں میں جب پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم, میں تجھے متقیوں کا امام بنانے والا ہوں. ان کا حال تو کیا تھا کہ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم, तुझे यादगार बना दिया। अल्लाह की मोहब्बत में अपने बाप को छोड़ा, बाप बुत घर था तो ये बुत शिकन थे। बाप ने जब पैगाम को ना माना तो आपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि वो आपका दुश्मन बन गया। और फिर वो कौम बुत प्रस्त थी, वो शिर्क करने वाली थी, आपने उस कौम को भी छोड़ दिया। और फिर आपने सब को छोड़ा और कहा कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, सयाहदीन, मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा। और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी की कि अल्लाह ताला तू मुझे कोई सहले औलाद दे, और अल्लाह ताला ने उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। और ये जो आपको औलाद मिली, ये बेटा मिला, अब बूढ़े हो चुके थे, 100 से ज्यादा आपकी उम्र थी, आपकी बीवी बूढ़ी थी। और जब फरिश्तों ने आकर ये खुशखबरी सुनाई, वो हंसने लगी, फदहकत, हंसने लगी और कहने लगी कि अना अजूजुन, मैं तो बुढ़िया हूँ, मेरे यहाँ बेटा कैसा होगा और क्यों कर होगा। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। फिर अल्लाह ताला ने उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि इब्राहिम अपने इस बेटे और बीवी को लेकर जाओ और मक्का के रेगिस्तान में इनको छोड़ आओ। ये कैसा सख्त इम्तहान था, ये कितना बड़ा इम्तहान था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफेद बुराक लेकर आए, बुखारी की तवील हदीस में इसकी तफसील मिलती है। आप उनके साथ जा रहे थे और रास्ते में जहाँ कहीं सब्जा नजर आता, आप पूछते कि क्या यहाँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते कि नहीं, इससे अभी और आगे, अभी और आगे, यहाँ तक के जहाँ रेत थी, यहाँ तक के जहाँ कोई इंसान नहीं, कोई चिरिंद परिंद नहीं, जहाँ की जमीन काबले काश न थी, जहाँ पानी न था, यहाँ कुछ भी तो ना था। और वहां पे अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पे आप अपने बीवी बच्चों को छोड़िए। अब ये के लेकर तो गए हैं और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इनको वहां छोड़कर आप वापिस आ जाइए। वो जो मुशरिक लोग हैं, जो बुत परस्त हैं, उनके अंदर तौहीद का नारा बुलंद करें, बहार हो के खिजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा बहार और खिजां का पाबंद नहीं है, बाहर हो गए खिजान, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने बीबी हाजरा को वहां पे छोड़ा, कोई भी तो नहीं था, मैं और आप भी यहाँ पे आए हैं डॉलर की तलाश में, अच्छा घर, ब्राइट फ्यूचर, अच्छी एजुकेशन, क्या क्या ख्वाब मैंने और आपने देखे हैं, और किस तरह से हम लोगों के सामने यहाँ की जिंदगी को पेश करते हैं कि हमारे पीछे वाले एड़ियां उठा उठा कर कहते हैं कि हमें बुलाते क्यों नहीं हो, हमें कब बुलाओगे, हम कैसे आ सकते हैं, हमारे लिए कुछ करते क्यों नहीं हो। और यहाँ पे टैक्सियां चलाते हैं, रोड़ा कूटते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और वहां पे जाके न जाने क्या क्या कहानियां सुनाते हैं कि वो लोग समझते हैं कि दरख्तों से डॉलर लगते हैं, वहां की लाइफ तायुश की लाइफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा फ्यूचर और डॉलर के लिए वहां नहीं गए थे, अरब के रेगिस्तानों में, इसलिए अल्लाह का हुक्म की अताअत करते हुए वहां पे गए थे। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम तुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, तू वापस लौट आ। वापस आते हुए अपनी बीवी को चंद खजूरें और पानी का मशकीजा देकर जब आप आने लगे, तो बीवी पूछने लगी कि इब्राहिम आप कहाँ चले, एक दफा पूछा, दो दफा पूछा, आप खामोश रहे, तीसरी दफा कहा क्या अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। और बीबी हाजरा का ये जवाब, आप सोचे तो सही, आप जरा थोड़ी देर के लिए गौर तो करें, अपने सीने पर हाथ तो रखें, अपने ईमान का जायजा तो लें, अपने दिल से पूछें अगर मैं और आप उस जगह होते तो क्या करते। कहने लगी ए इब्राहिम, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरा रब हमें जाया नहीं करेगा, वो हमें तना नहीं छोड़ेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े, पलट पलट कर देख रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे और दुआ करते जाते थे, रब्बिज अल हाजल बलद आमिना, ए रब इसको अमन का घर बना दे, इसके रहने वालों को रिज्क दे, यहाँ फलों की कसरत दे, और ए अल्लाह ये अमन का घर बना। आप दुआ करते जाते थे और फिर वहां से आप चले आए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर जाते हैं, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके हैं और अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अब यहाँ पर मेरे घर को तामीर करो, वो घर जो पहले फरिश्तों ने बनाया था, वो घर खाना काबा जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर वक्त और सैलाब के बाद जब वो मिट चुका था तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलाम को जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए रहनुमाई की कि अब इस घर की आप तामीर करें, और फिर इस घर को बनाया। और आप सोचें कि कहने को वो काली चादरें हैं, कहने को वो काला कपड़ा है, वो एक चकोर मुरब्बा शक्ल जो घर है, लेकिन वो घर उसके अंदर क्या चीज पिन्हा है, उसके अंदर इतनी जाज़बियत क्यों है, उसके अंदर इतनी कशिश क्यों है कि जो वहां जाता है फिर तड़प तड़प कर ये आरजुए करता है कि कब अल्लाह का बुलावा हो तो मैं जाऊं। और मेरी बहनों, वहां का जाना पैसे की वजह से नहीं है कि जिसके पास पैसा हो असबाब हो तो वहां चला जाएगा, जिसको अल्लाह का बुलावा आ जाए तो वहां पे चला जाता है। तो हर दिल तड़पता है, हर दिल मचलता है, हर कदम वहां पे जाना चाहता है कि मैं भी जाऊं और जाकर आशिक बनकर मैं भी परवाना बनकर खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाऊं, जैसे तितलियां फूल के गिर्द चक्कर लगाती हैं, जैसे परवाने शमा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो हर मुसलमान का दिल मचलता है, दीवाना वार वो झूमता है, रोता है, दुआएं करता है, और जब आता है वहां से उसकी यही दुआ होती है कि अल्लाह तू मुझे इस घर में फिर बुला। तो वो घर किसने बनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। वो इतने नेक, वो इतने मुत्तकी कि अल्लाह के हर हुक्म पर सरापाए अतात बनने वाले, सरे अतात खम करने वाले, और वो खाना काबा की तामीर करते जाते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला गवाही देते हैं कि इब्राहिम जब खाना काबा की दीवारों को ऊंचा कर रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, और ये दुआएं भी कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, के अल्लाह तू इसको कबूल कर लेना और तू दुआओं को सुनने वाला है। दोनों बाप और बेटा ये दुआ कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर, और ये दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह ने उनकी दुआ को कैसे कबूल किया, हजारों साल गुजर गए और आज खाना काबा में हरम के अंदर खाना काबा के गिर्द एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि कोई वहां पे अल्लाह की इबादत ना कर रहा हो, कोई वहां पे तकबीर बुलंद ना कर रहा हो, कोई तवाफ ना कर रहा हो। हर लम्हा हर घड़ी दीवाने हैं, कुछ आशिक हैं, कोई नफल पढ़ रहा है और कोई रो रहा है, दुआएं कर रहा है, मनाजात कर रहा है, गिरियाजारी कर रहा है। उसको इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं, कोई मुल्तजिम के साथ लगा हुआ है, कोई हतीम के अंदर है, कोई हजरे असवद के साथ चिमटा हुआ है, कोई रुकने यमानी के पास है, कोई मकाम इब्राहिम के पीछे है, और रो रहा है और दुआएं कर रहा है कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे बख्श ले। साथ वाले को साथ वाले की खबर नहीं होती, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुर्ख है, कोई सफेद है, अमीर है, गरीब है, और एक अल्लाह है उसका और वो है एक दूसरे से बेनियाज। अब बच्चे छोड़ के जाते हैं, बच्चों की याद नहीं आती, अब सब कुछ भूल जाते हैं। ये क्या चीज है? ये अल्लाह की कबूलियत है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लोगो इखलास है, ये इखलास है उनका, ये उनकी कबूलियत है उनके अमल की। हर शख्स जाना चाहता है और जाके सब कुछ भूल गया, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, खुद ही मौजे ले चली कश्ती को साहिल की तरफ। और आप सोचें कि हज क्या है, तवाफ को ले लें, मकाम इब्राहिम के पीछे नफल की अदायगी को ले लें, आप सही को देख लें। और सही हम क्यों करते हैं? बीबी हाजरा कौन थी? एक औरत, एक औरत। ओ अल्लाह के फैसले पे राजी होगी कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा है? एक जुमला नहीं का, मैं और आप होते तो क्या कहते कि कुछ तो खौफ करो, कहां रेगिस्तान में छोड़ के जा रहे हो? यहाँ तो दरिंदे हैं, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, मैं खाऊंगी क्या, मैं पीऊंगी क्या? ये मेरे रब का अगर ये फैसला है तो इब्राहिम मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा का ये अमल मेरी बहनों इतना पसंद आया कि औरतें तो औरतें, मर्दों का भी हज और उमरा कबूल नहीं होता जब तक वो बीबी हाजरा के कदमों के निशान पर सही नहीं करते। एक औरत के अमल को अल्लाह ने इतनी कबूलियत दी, जब इखलास होता है अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। तो सात चक्कर जो सही के लगाए जाते हैं। और हज क्या है? کہ شہر کو چھوڑ کر منا کے میدان میں آ کر حاجی بسیرا کر لیتے ہیں. اب منا کے میدان میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ منا کے میدان میں کوئی خاص کام تو نہیں کرنا ہوتا, بس میدان میں آگے ہے, شہر چھوڑ دیا ہے, اور لباس جو حاجیوں کا ہوتا ہے, جو احرام وہ پہنتے ہیں, دو لٹھے کی سفید چادریں, اور یہ وہ دو لٹھے کی چادریں ہیں جو مرنے والے کے اوپر لپیٹ دی جاتی ہیں. تو حج کا سفر آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے. یہ کپڑے, یہ زیور, یہ گھر, یہ گاڑی, یہ ملبوسات, یہ بچے, یہ فیکٹریاں, یہ زمینیں, یہ جائیدادیں اور یہ بینک بیلنس, یہ لوگوں میرے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. دو لٹے کے اندر اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دینی ہے, پھر حساب کتاب ہونا ہے, من ربو کا, من رسولو کا, من کتابو کا, اور ساری باتیں, اور من رسولو کا. تو دو لٹھے کی چادریں آخرت کے سفر کی یاد دلاتی ہیں. اب حاجی نے کپڑے بھی اتار دیے, وہ کپڑے جو عام پہنتا ہے. کون سے کپڑے پہنے؟ جو اللہ کو پسند ہے. اب وہ سبغت اللہ میں رنگا جا رہا ہے, عمرہ کرنے والا بھی. احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ احرام تو ایسے ہے جیسے کہ تکبیر تحریمہ. آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ دیتی ہیں, اللہ اکبر, آپ تو اللہ اکبر عام ہر وقت کرتی رہتی ہیں, لیکن جب احرام میں آپ کہتی ہیں, جب نماز میں اللہ اکبر کہتی ہیں, تو کیا مطلب ہے؟ اب باتیں کرنا حرام. اب آپ دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتی, آپ فون سن نہیں سکتی, آپ چل نہیں سکتی, آپ کھانا پکا نہیں سکتی. اس لیے نماز کے شروع میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب عام طور پہ آپ کی جو بھی حرکات و سکنات ہے وہ حرام ہو گئی. تو میری بہنوں, دو لٹھے کی چادروں کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ کام جو ہم کرتے تھے پہلے, جو حلال تھے, وہ حرام ہو گئے. اب میاں بیوی کا تعلق حرام ہے, خوشبو نہیں لگا سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں تراش سکتے, اور نہ ہی مباشرت کی یا اس طرح کی کوئی باتیں کر سکتے ہیں. ولا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. اب تو آپ احرام میں آگے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ, جو تو نے کہا میں اس کے آگے جھک گئی, جو تو نے کہا میں تیرا ہو گیا. اب اللہ, یہ دل, یہ جسم تیرے لیے ہے. دو لٹھے کی چادریں پہن کر شہر کو بھی چھوڑ دیا اور منا میں آ گئے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ میں سے کوئی یا میں یا کوئی دیوانہ یہ کہے کہ حرم میں نماز کا ثواب تو ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے, میں نہیں منا کے میدان میں جاتی, میں تو اب حرم میں بیٹھوں گی اور نمازیں پڑھوں گی, اتنی مشکل سے تو حرم ملا ہے, خانہ کعبہ ملا ہے. اور ان دنوں میں جب سارے دیوانے, جب سارے مجنو بن کر, جب سارے شیریں اور فرہاد بن کر, تیس بن کر, مجنو بن کر, جب منا کے میدان میں آ جاتے ہیں, اللہ کے عشق میں رنگے جاتے ہیں, تب حرم کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر, خانہ کعبہ کے آس پاس رش نہیں ہوتا. کوئی دیوانہ سوچ سکتا ہے کہ بڑا موقع ملے گا اب چومنے کا حجر اسود کو, اب مجھے بہت سے بوسے مل سکتے ہیں, بوسے لے سکتی ہیں. نہیں, اب وہاں پہ منا کے میدان میں پتھروں کے اوپر خیمے کے اندر رکنے کا نام عبادت ہے, اور اس کا اجر ہے. تو میری بہنوں, اجر اس بات میں نہیں ہے کہ اب حرم کے اندر نماز پڑھی جائے, اصل میں سجدہ اللہ کے حکم کو ہے, اطاعت اللہ کے حکم کی ہے کہ اللہ نے کہا تو بی بی حاجرہ کو میدان میں جا کر چھوڑ آئے, اللہ نے کہا تو بی بی حاجرہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئی, اللہ نے کہا تو حاجی منا کے میدان میں آ گئے, اللہ نے کہا تو میدان کو چھوڑ کر عرفات کی طرف چلے گئے. عرفات کا دن حج کا رکن عظیم ہے. اگر کسی کو عرفات کے میدان میں حاضری نہ ملے, خواہ وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو, اس کا حج فوت ہو گیا, اس کو حج ہی نہیں ہے. تو ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں پہ رکنے کا نام حج ہے, ورنہ چند لمحے بھی کوئی رک جائے. یہ وہ میدان ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی, یہ وہ میدان ہے جو حشر کا میدان بنے گا, اور یہ وہ میدان ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہ معاف کرتے ہیں. اور اس دن اتنا زیادہ ابلیس غصے میں ہوتا ہے اور بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی مشکل سے بنی آدم سے یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ کروایا, اور سارے گناہ معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور عرفات کے میدان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعائیں مانگنا. حتیٰ کہ مغرب کا وقت تو ہو جائے گا, مغرب وہاں ادا نہیں کرنی, مزدلفہ میں آ کے ادا کرنی ہے. شام ہو جائے گی لیکن مغرب کو آ کر مزدلفہ کے میدان میں ادا کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں تو مغرب کی نماز لیٹ نہیں کی جا سکتی, تو سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کے حکم کو ہے. بات یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں, جو اور جب اور جس حالت میں جو حکم اللہ تعالیٰ دے دیں اس کے آگے میں اور آپ جھک جائیں. اسی کا نام ابراہیم ہے, اسی کا نام مسلم حنیف ہے, इसी का नाम बेहतरीन सच्चा और पक्का मुसलमान होना है। और हज की पूरी दास्तान यही सिखाती है कि तुम अल्लाह के बन जाओ। और इसी तरह आप देखें मुजदलफा के मैदान में ईंटों का पत्थरों का बिस्तर है और हाथ का तकिया है और रात अंधेरी है और आसमान का नजारा करने का मौका होता है कि आसमान पर तारे हैं जगमग जगमग करते कि वो अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं और तारे भी इस बात पर खुश होते होंगे कि अमीर और गरीब महलों में रहने वाला जेवर और अच्छे मलबूसात में रहने वाला आज देखो खाक नशी है और ये है अल्लाह की इबादत। अब हज हो गया, 10 ज़ुलहज है और कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी भी हम क्यों करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। ये सूरह साफ़ात में तफसील से पूरी कुर्बानी का मंजर आप पढ़ सकती हैं कि उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ, तो बता के तेरी क्या राय है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि नहीं अब्बा जान आप मुझे कुर्बान ना करें, बल्कि कहा कि इफ़ल आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जाता है, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी गोया के आप मुझे अमल करने वालों में से पाएंगे। قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين। दोनों मुती हो गए, बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। अब सोचें बुढ़ापे में मिला है बड़ी दुआओं के बाद, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था क्योंकि नबी का ख्वाब जो है वो वही होता है। अब ख्वाब में जब देखा है कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ तो उसको पेशानी के बल गिरा दिया। वना दई नया इब्राहिम, तो हमने आवाज दी कि इब्राहिम कद सद्दक तर रोया कि तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, यकीनन ये बड़ा खुला इम्तहान था, बड़ी सख्त आजमाइश थी इब्राहिम की। वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन। हमने उनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा, इब्राहिम पर सलाम हो, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। और हमने फिर नेकी का क्या बदला दिया? वबशरनाहु बिइसहाक नबिय्यन मिनस सालिहीन वबारकना अलैहि वअला इसहाक वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों में पैगम्बरी लिख दी, इस्माइल हैं तो इसहाक हैं, इसहाक के बाद याकूब हैं और फिर यूसुफ है अलैहिस्सलाम। इन सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो कि नस्लों में नेकी लिख दी। और ये जो कुर्बानी थी अल्लाह ताला ने उसको ऐसी कबूलियत बख्शी कि पीछे लोगों ने भी ये सुन्नत छोड़ दी। तो कुर्बानी किस चीज का नाम है? अल्लाह के हुक्म की अताअत करने का नाम है। कुर्बानी के जरिए अल्लाह का हुक्म हासिल होता है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह सूरत कौसर में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फसल्ली लिरब्बिका वनहर। और आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है कुर्बानी करना, और हम सब आज कुर्बानी करते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। और उसके बाद हम इस बात का ऐलान करते हैं, यानी हाजी वहाँ ऐलान करते हैं और यहाँ भी हम ये ऐलान करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला जब भी तू हुक्म देगा, जब भी तू कहेगा, जब तेरे दीन को जरूरत पेश आएगी, ये मेरी जान, ये मेरा माल, ये मेरा वक्त, मेरी सलाहियतें, मेरा जो कुछ भी है अल्लाह, मैं तेरे रास्ते पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो कुर्बानी क्या सिखाती है? कि सब कुछ ऐ अल्लाह तेरे नाम पर मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज की कहानी इबादत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो इश्क और मोहब्बत की दास्तान है और जो इखलास की दास्तान है ये उसकी कहानी है, और हज की कहानी अपना सब कुछ अल्लाह के नाम कुर्बान कर देने का ऐलान है। इसका एक एक अमल और इसका एक एक रुकन इसी बात का ऐलान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज तो फर्ज है सिर्फ उन लोगों पर जो साहिब इस्तताअत हैं। अब कुछ लोग जो कि हज की इस्तताअत रखते हैं, जैसे मुसलमान हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, सेहतमंद हैं, आजाद हैं, रास्ता पुरअमन है, मालदार हैं, और उसके साथ औरतों के पास महरम मौजूद है, तो वो हज कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां पे हज कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं वो क्या करें? तो हाजियों का ये हज, हाजियों का ये अमल अल्लाह को इतना महबूब है, इतना पसंद है, इतना मरगूब है कि अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाई, वल फजर वलयालिन अशर, कसम है फजर की। और मुफस्सरीन क्या कहते हैं, एक इसके मानी है कि ईद उल जुहा के दिन की कसम, वो आम दिन नहीं है, बड़ा खास दिन है जो कुर्बानी का दिन है, जो यौमुन नहर है। और दूसरे वलयालिन अशर से मुराद जमहूर मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद जुलहज के इब्तदाई 10 दिन है। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी खूबसूरत हदीस भी मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अयामिल अमल الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام यानी العشر الاول من ذي الحج, जुलहज के 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन नहीं जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब हो। लोगों ने पूछा, कालू या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? कला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं, इल्ला रजुलुन, सिवाय उसके वो आदमी, खरज बे नफ्स से ही, जो अपने नफ्स को लेकर निकला, व माल ही, और अपने माल को, यानी कोई ऐसा शख्स जो अपनी जान और माल के साथ जिहाद में जाए, तुम मला यर्जे मिन ज़ालिका बिशई, और फिर इन दोनों में से कुछ भी वापस ना लाए, यानी शहीद हो जाए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में हमें क्या फरमा रहे हैं कि ये 10 दिनों की इबादत अमलुन सवाले अल्लाह को बहुत पसंद है, सवाए उस शख्स के जो जान और माल लेकर जिहाद पे जाए और फिर वापस लौट कर ना आए। आप जरा तसव्वुर करें, जान और माल को अल्लाह के रास्ते में देना, यानी पूरा माल और जान, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी सलाहियतों के साथ, बस अल्लाह के रास्ते में उसको खपा दिया जाए। इसी तरह एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 जुलहज का रोजा गुज़िश्ता और आने वाले 2 साल के गुनाहों का कफारा है। युकफ्फिरु ज़नूबा सनतैन मादियतैन तेहुमा मुस्तक़बिला, तो 2 सालों के गुनाहों का कफारा है। और 10 मुहर्रम का रोजा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफारा। अब आप देखें, अरफे का रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा है। तो ये जो दिन है 10 दिन, इन दिनों के बारे में हमें ये पता चलता है कि इन दिनों की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो क्या करना चाहिए? 1 जुलहज से लेकर 9 जुलहज के रोजे रखने चाहिए। 9 जुलहज का तो खास तौर पर, और वैसे क्या है कि जिस तरह लैलतुल कदर की तलाश करते हैं ना, इसी तरह कभी के दिन बड़े कभी की रातें, तो जुलहज के दिन बहुत अहम है और साथ में इसकी रातें भी, और रमजान का पूरा महीना और आखिरी अशरा बहुत मुबारक है लैलतुल कदर की वजह से। तो ये हज की वजह से दिन की इबादत और इसमें रोजे रखना बहुत अहमियत रखता है। और क्यों हम रोजे रखें कि वो जो आशिक हैं, वो जो मजनू हैं, वो जो दीवाने हैं, जो घरों को छोड़कर अल्लाह के घर की जियारत कर रहे हैं, अल्लाह के दरो दीवार को चूम रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, वो जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मस्ताना नारा लगा रहे हैं, दीवाना वार नारा लगा रहे हैं, ना लिबास की परवाह है, ना अपने आप को तैयार करने की, ना अपने आप को संवारने की, मैदान में है जैसे मजनू मैदानों में निकल जाए, और मैदानों में निकल कर शहरों को छोड़कर अल्लाह अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का वो नारा लगा रहे हैं, तो हम क्या करें कि वैसे दीवाने तो नहीं है, आओ कुछ दीवानों की शक्ल ही बना लें, आओ कुछ आशिकों के इश्क की जो कैफियत है, जो जाज़बियत है, वो अपने अंदर पैदा कर लें। वो वहां अमल कर रहे हैं, हम यहाँ पे दूर रहकर अपने अमल को उनके अमल के मुशाबे कर लें। जैसे कोई तो वाकई खूबसूरत होता है, और हम क्या करते हैं, हमेशा हर वक्त मेकअप की फिक्र करते हैं कि मैं भी कैसे खूबसूरत नजर आऊं। तो खूबसूरत यानी कितना भी मेकअप करें, लेकिन असल चीज तो सीरत है। हुसन है एक दिन और सीरत सारी जिंदगी। तो असल बात क्या है कि उन आशिकों के इश्क की याद को ताजा करना इस 10 दिनों में जरूरी है। तो 10 दिनों के रोजे रखना, और खास तौर पर 9 जुलहज का रोजा हम सबको रखना चाहिए। और क्या उसका फायदा है कि 2 सालों के अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देगा। इसमें एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो माफ कर देगा। अपना जो हक है हकूकुल्लाह, उसमें हमने कमी की है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा। किसी का कर्ज देना है और किसी की गिबत की है, चुगली किसी की है, किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को गाली दी है, किसी के साथ ज्यादती की है, कोई बीमार हो गया उसकी इयादत नहीं की, किसी के यहाँ फौतगी होगी ताजियत नहीं की, हकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक के वो बंदा हमें माफ ना कर दे। इनकी अदायगी लाजिम है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमें रोजे रखने चाहिए, ये अहम है। दूसरी बात यह है कि चूंकि अमल उन सवाले हूं कहा, तो और अमले सवाले क्या हो सकते हैं कि हम जिक्र और अस्कार करें। जिक्र और अस्कार क्या है? जिक्र कहते हैं याद करना, महबूब की याद कायम हो दिल में रहे। किसको इंसान याद करता है और बार बार करता है? किसकी याद होती है जो हमेशा दिल के अंदर रहती है, जिससे इंसान प्यार करता है? तो मैं और आप, हमें सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह से करना चाहिए। तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? जिक्र और अज़कार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों ने कोई मजलिस कायम की, ना इसने अल्लाह का जिक्र किया और ना इसके नबी पर दुरूद भेजा, तो वो महफिल इन लोगों के लिए नुकसान होगी, बायसे नदामत होगी, फिर अल्लाह अगर चाहेगा तो उन्हें अजाब देगा और अगर चाहेगा तो उन्हें बख्श देगा। इसी तरह जिक्र से दिल आबाद होता है, जिक्र से दिल का जंग दूर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है इसकी मिसाल, और जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता इसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा नमाज पढ़े थे, तो लोगों में से एक शख्स ने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो ये जो अल्फाज उसने पढ़े और अल्लाह की हम्द बयान की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलमात को कहने वाला कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीला। अब लोग डरने लगे कि पता नहीं क्या गलती होगी। तो लोगों में से एक शख्स ने आखिर अर्ज किया कि मैं हूँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, मुझे इन कलमात पर ताज्जुब हुआ कि इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ने बयान करते हैं कि जब से मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते सुना, मैंने इन कलमात को कभी नहीं छोड़ा। यानी खास तौर पे इन कलमात का फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलेमताने खफीफताने अलल निसाने सकीलताने अलल मीजाने। यानी जबान पर हल्के, मीजान पर भारी। और वो दो कलमे क्या हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। फिर इसी तरह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेराज में रसूल अल्लाह से मिले, तो उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कह दें और इनको बता दें कि जन्नत की मट्टी पाकीजा है, इसका पानी मीठा है और वो साफ मैदान है, और इसके पौधे सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर है। जो इन कलमात को पढ़ता रहेगा, इसके लिए जन्नत में पौधे उगते रहेंगे। ये भी तिर्मिजी की रवायत है। फिर इसी तरह ये भी बड़ी खूबसूरत एक रवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया रूहुल मानी तफसीर का नाम है, उसमें बयान किया गया है। आपको पता ही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बड़ी बेनजीर बेमिसाल थी। जब उनका दरबार लगता था, तख्ते शाही इतना वसी होता कि इस पर सोने चांदी की 6 लाख कुर्सियां बिछती, परिंदे इस पर साया करते, इतने परिंदे होते हैं कि उन 6 लाख पर साया करते, और हवा को जासूसी का काम सपुर्द होता। वो कहते कि रूए जमीन में जाओ, हमारे मुतल्लिक कोई बात की जा रही हो तो हमें पहुंचा दो। और जब तख्त पर दरबार मुनक्किद होता तो हवा को हुक्म दिया जाता कि इसको लेकर उड़े, चुनाचे हवा उसको लेकर उड़ती थी। एक दफा इसी शान शौकत से आपका तख्त उड़ा जा रहा था कि किसी ने ताज्जुब से कहा, سبحان اللہ ماذا اوتیا آل داؤد، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ آل داؤد کو کیا شان و شوکت دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شخص کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے متعلق کیا کہا. اب وہ تو پتا چل جاتا تھا، وہ سن بھی لیتے تھے، ان کو باتیں بتا دی جاتی تھی، وہ ڈرا. لیکن آپ نے تسلی دی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو ایسے کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تسبیحۃن واحدۃن خیر مما اوتیا آل داؤد، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا اس شان و شوکت سے بہتر ہے جو آل داؤد کو دی گئی. تو یہ ہے اہم بات کہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی یاد رچی بسی ہونی چاہیے، اور دوسری بات زبان کے اوپر بھی. بی بی فاطمہ جب پیارے رسول کے پاس آئی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ کوئی غلام دے دیں، تو بی بی فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر. کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی ہے، ساری تھکن دور ہو جائے گی. کیونکہ میں سوچ رہی تھی اس بات پر، تھکا ہوا ہو اور تسبیح ہوتی نہیں، اور کہا گیا کہ تھکے ہوئے تو تسبیح کرو، تو مطلب کیا ہے کہ ایک تمہارے اندر پٹرول بھر جائے گا، تمہاری روح کو وجد آ جائے گا. ایمان انسان کے اندر ایک پارا بھر دیتا ہے، پھر بھاگتا ہے انسان اور تھکتا نہیں ہے. اور پھر ذکر کے معنی کیا ہیں کہ مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کلو متی ان ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا گویا کے ذکر کرنے والا ہے. ایک ذکر کی قسم ہے اللہ اللہ کرنا، اور دوسری ذکر کی قسم ہے جو عملی قسم ہے، اور وہ ہے شریعت کی پابندی کرنا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ عملی ذکر کیا جائے. اور عملی ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور یہ اللہ کی یاد کی بڑی اہم شکل ہے. تو ان 10 دنوں میں عمل صالح کیا ہے؟ ذکر اور اذکار کرنا. تیسری چیز نوافل پڑھنا، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنا. اگر ہم تہجد نہیں بھی پڑھتے، چلو ان 10 دنوں میں ہی پڑھ لیں. تہجد نوافل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اخلاص کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر ہوتے ہیں، اور انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، آسمان پہ فرشتہ سب سے نچلے آسمان پر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی مانگنے والا کہ اللہ اس کو دے، ہے کوئی رزق میں کشاش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رحم چاہنے والا. تو ہمیں ان دنوں پہ نفل پڑھنے چاہیے. پھر چوتھی بات کہ ہمیں تکبیر کہنی چاہیے. حاجی تو تلبیہ بھی کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور اس کے ساتھ تکبیر کہنی چاہیے. تکبیر 9 ذوالحج کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج کو عصر کی نماز تک تکبیر کہنا. اور تکبیر کیا ہے؟ سب مل کر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دو تین طرح کی تکبیر ملتی ہے، تینوں ہی ٹھیک ہے. اور تکبیر پڑھنا، ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، چمکدار دن، کیونکہ حاجی مسلسل نیکی اور اچھے کاموں میں مصروف ہے. اب آپ کیا کریں کہ آپ ان عاشقوں جیسی شکل ہی بنا لیں، میں ان عاشقوں جیسی شکل ہی بنا لوں. اب بھولے نہیں یوم عرفہ کا دن، بازاروں کے اندر گھومنے پھرنے میں یا سونے میں یا ادھر کے کاموں میں نہ گزاریں، عبادت میں ہم گزاریں. تو تکبیر کہنی شروع کر دیں. آپ دیکھ لیں ہر فرض نماز کے بعد تاک تعداد میں تکبیر کہنی چاہیے. مسجدوں میں امام ہر فرض نماز کے بعد جب یہ کہتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتی ہے. تو عورتوں کو بھی کہنی چاہیے، مرد بلند آواز میں اور عورتیں ہلکی آواز میں ذرا کہیں. اور عید کے دن بھی تکبیر کہنا، عید کی نماز پڑھتے ہوئے جب پڑھنے جا رہے ہیں اور جب آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. پھر اسی طرح ان دنوں کی ایک اہم عبادت قربانی ہے، قربانی کرنا. اور قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات میں کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو فدیے میں ذبح عظیم، بڑی بابرکت قربانی دی. اسماعیل علیہ السلام کی جو تسلیم و رضا تھی اس کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا اس کو بھی قبول کیا، اور جنت سے دمبا بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے ہر سال امت مسلمہ قربانی کرتی ہے. تو قربانی بھی ہر صاحب استطاعت کو دینی چاہیے، जिसके पास भी इस्तेआत है तो उसको कुर्बानी देनी चाहिए, तो जो ज़कात देता है उसको कुर्बानी देनी चाहिए। और कुर्बानी के सिलसिले में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पता चलती है कि 10 ज़ुलहज को खून बहाने से बढ़कर इब्ने आदम अल्लाह ताला के यहाँ कोई बेहतर अमल नहीं करता। ये जानवर कयामत के दिन अपने सींगों, अपने जो पाँव हैं, खुरों और बालों समेत आएंगे और खून के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ इसका एक मकाम होता है, सो तुम ये कुर्बानी खुश दिली से किया करो। रसूल अल्लाह के सहाबा ने पूछा कि इन कुर्बानियों का मकसद क्या है, आपने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर पूछा इससे हमें मिलेगा क्या, फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी। कहने लगे और ऊन के बदले भी, फरमाया भेड़ की ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी मिलेगी। अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है तो कुर्बानी करनी चाहिए। अब देखें हाजी जब एहराम बांध लेते हैं, बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, गैर जरूरी बाल साफ नहीं कर सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, उन पर बहुत सी पाबंदियां हैं। लेकिन जो कुर्बानी करने वाला है उसके लिए भी हमें क्या बात पता चलती है कि वो ना नाखून काटे और ना ही गैर जरूरी बाल साफ करे। तो जुलहज का जब चांद नजर आ जाए, जुलहज जब चढ़ जाए, तो फिर पहले पहले उसको अपने नाखून और बाल साफ कर लेने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि हमने कुर्बानी करनी है तो हम नाखून नहीं काटेंगे और बाल पहले से साफ कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें कुर्बानी नहीं भी करनी तो वो भी ऐसा करे। क्योंकि एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो एक ही जानवर है, बकरी है या भेड़ है, और उससे मेरे घर का गुजारा होता है, तो क्या मैं भी कुर्बानी करूं? तो आपने कहा कि नहीं, लेकिन आपने कहा तुम जुलहज से पहले अपने बाल साफ कर लो और नाखून काट लो और तुम्हें भी उसके सवाब मिलेगा। तो इससे क्या बात पता चलती है, हाजी वहां पे अमल कर रहे हैं जो नहीं कुर्बानी कर सकते, अगर वो भी ये अमल कर लें जुलहज के चांद देखने से पहले, यानी अभी जुलहज शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले पहले गैर जरूरी बाल जेर नाफ के और बगल के साफ कर लेना या जो भी आप करते हैं और उसके साथ नाखून उतार लें, तो ये एक तरफ हाजी ये अमल करते हैं, कुर्बानी करने वाला करता है, और हम भी सब करेंगे तो इसका अल्लाह ताला सवाब देंगे। फिर इसी तरह तीसरी इन दिनों में खास तौर पर हुकूकुल इबाद अदा करने की, यानी इन रोजा रखना, जिक्र, अस्कार, नवाफिल, तकबीर और कुर्बानी के साथ जिस चीज की मुझे और आपको सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए इन दिनों में खास तौर पर हुकूकुल इबाद अदा करने की। हुकूकुल इबाद क्या है, कोई बीमार है तो मैं और आप उसकी इयादत करें, कोई मर गया है तो उसकी ताज़ियत करें, तो उसके जनाजे में जाएं, सलाम करें और छींक उसका जवाब दें यरहमुकल्लाह, और उसकी गैर मौजूदगी में गायबाना तौर पर उसको अच्छी तरह याद करें, उसने मारी है तो गोया कि उसकी इज्जत की, उसकी असमत की हिफाजत करें। आपने हजरतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था तो उसमें क्या कहा था कि एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम कर दी गई, तो क्या हमारे लिए जायज है कि दूसरों की गीबत और चुगली करें? तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जबान की हिफाजत करें और अपने दिल की हिफाजत करें। आइए चलते चलते 10 जुलहज के दिन के मसनून काम, जो ईद उल जुहा के खास काम है, उनको भी हम याद कर लें। ईद उल जुहा के दिन बगैर कुछ खाए पिए ईदगाह की तरफ जाना मसनून है, ये रोजा तो नहीं होता लेकिन बगैर कुछ खाए पिए ईदगाह की तरफ जाना। नंबर 2 सुबह सवेरे उठना। नंबर 3 गुसल करना। नंबर 4 अपनी जेबो जीनत का एहतमाम करना, आराइश और जिबाइश का अपने आप को तैयार करना। नंबर 5 खुशबू लगाना। नंबर 6 तकबीर पढ़ना। नंबर 7 एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना। वैसे तो पैदल जाना ईदगाह की तरफ सुन्नत है, और अब दूर दूर है, अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो गाड़ी पर भी अगर जा रहे हैं तो एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से आएं। हम में से बाज लोग ये भी कहते हैं हम तो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आप ईद की नमाज पढ़कर जब आते तो कलेजी को तनावल करते। वैसे तो अब हमें यहाँ पे बाहर कुर्बानी बड़ी देर बाद मिलती है, कुछ भी मिले आप आके खा लें, लेकिन यह है कि कुर्बानी का गोश्त खास तौर पे खाएं कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आप खुद भी खाते थे, आप दूसरों को भी देते थे, दोस्तों को भी खिलाते थे, और मैं तो ये समझती हूँ ईद उजहा की जो ईद है उस पर तो खास तौर पर कुर्बानी का गोश्त पकाना चाहिए। और बाज लोग कहते हैं जी वैसे हम गोश्त खा लेते हैं, कुर्बानी के गोश्त से हमें स्मेल आती है, ये शैतान की एक चाल है। दूसरी बात कि सुन्नत है अल्लाह के नबी की कि अपनी आराइश और ज़िबाइश का एहतमाम करें। औरतें तैयार नहीं होती, उनमें की तैयार होना, और मेरा तो सारा दिन चूल्हे के आगे गुजर जाना है, सारा दिन तो मैंने चूल्हे के आगे रहना है। अब मेरी भी कोई ईद है, संदूक भरे हुए कपड़ों से और कपड़े औरतें पहनती नहीं है, मेरी भी कोई ईद है नहीं। खुद भी तैयार हो, ईद के दिन लड़ाई झगड़ा ना करें कि शौहर ने मुझे अच्छा जोड़ा नहीं दिया या फलां जगह लेकर नहीं गया। पूरी कोशिश करें कि आज ईद का दिन है, ये खुशी मनाने का दिन है। बच्चों को भी कैंडी बैग बनाकर देना, बच्चों के लिए पार्टी का इंतजाम करना, उनकी पसंद की डिश बनाना, क्योंकि हम कुफर की धरती में रहते हुए बच्चों को यही कहते रहते हैं कि ना तो मदर डे है, ना फादर डे है, ना ब्राइडल शावर है, ना बेबी शावर है, ना वैलेंटाइन डे है, हेलोवीन वो भी नहीं है। तो हम बहुत से दिन कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अल्लाह की बंदियों और अल्लाह के बंदो, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, फिर जो दिन अल्लाह के नबी ने खुशी मनाने के लिए कहा है, फिर उस दिन तो खुशियां मनाएं, उस दिन क्यों सोग मनाते हैं? क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि जी हमारे खानदान में 6 महीने पहले एक डेथ हो गई थी या 7 दिन पहले एक डेथ हो गई थी, हमारी ईद सोग की ईद है। 3 दिन सोग है, 4th दिन सोग का नहीं है, सिवाय औरत के जिसका शौहर फौत हो जाए तो उसके लिए 4 माह और 10 दिन का सोग है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, नेकियों में आगे बढ़ाए, हम सब से राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अजीम। ऐ अल्लाह तो हम सबको जो हज किया है तो हज की हिफाजत करने वाला बना, और जो हज पर हाजी जा रहे हैं उनको तो हज मबरूर दे दे, तो उनको ऐसा हज दे जो कि कबूल हुआ हुआ है। और ऐ अल्लाह तो हम सबको अच्छा मुसलमान बना, तो हम सबके गुनाहों को माफ कर दे, तू हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर ले जो इन 10 दिनों में इबादत करेंगे और ऐसे इबादत करें जैसे कि तुझे पसंद है। ऐ अल्लाह तू हम सब की नेक और जायज ख्वाहिशों को कबूल कर ले, बच्चों को नेक बना, मुत्तकियों का इमाम बना, हम सबको नेकी का शौक दे दे, तू हमारे घरों को इस्लाम का किला बना, तू हम सबसे राजी हो जा। और ऐ अल्लाह तू हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ऐ खुदा जात का अपनी मुझे इरफा हो जाए, मेरी हर सांस तेरी ताबे फरमा हो जाए। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।